जन्नत में जितना सोना था वो सो लिया। अब जब इस दुनिया के खत्म होने के बाद जन्नत में जाने को मिलेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है, तो जन्नत के अंदर अब सोना नहीं मिलेगा। फर्स्ट एंट्री जब हुई थी जन्नत में, तब आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम इंसानों की तरफ से सो लिया। अब सेकंड एंट्री के बाद किसी को जन्नत में सोना नहीं मिलेगा। सोना मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा, सोना भी नहीं, गोल्ड मिलेगा। यहां तक कि अल्लाह ताला जन्नत में मर्दों को भी गोल्ड पहना ही नहीं, सोना पहना ही नहीं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाथ मुबारक में हुजूर ने सोना दिया गोल्ड, और दूसरे हाथ के अंदर रेशम का कपड़ा दिया, और फिर आपने ये इरशाद फरमाया, ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए दुनिया में हराम है, औरतों के लिए हलाल है, और जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला ये दोनों चीजें इंशाअल्लाह मर्दों को भी पहना ही है। इस हदीस से ये मैसेज मिला, ये सबक सीखने को मिला कि मर्द दुनिया में गोल्ड और सोना नहीं पहन सकता, हराम है, एक ग्राम भी नहीं, एक तोला भी नहीं। चाहे गिफ्ट में मिला हो, चाहे बख्शीश में मिला हो, चाहे नहीं से भी मिला हो, ये औरतों के वास्ते, मर्द के लिए दुनिया में हराम है। और इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर जाने के बाद खूब मिलेगी। तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में सो रहे थे, और अल्लाह ताला ने दीन की हालत में उनकी सर्जरी की, ऐसे सर्जरी की, ये जो चेस है उसमें ये लेफ्ट साइड के अंदर जो पसली है, एक पसली अल्लाह ताला ने खींची आदम अलैहिस्सलाम, और एक पसली में से अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया। इसीलिए कभी आप किसी चेस स्पेशलिस्ट के पास जाकर के गिनवा दें, एक साइड में 18 है, दूसरी साइड में 17 है, 18 है एक साइड में, सेकंड साइड में 17 पसली। आदम अली सलाम की जो एक पसली अल्लाह ताला ने खींच ली थी, और उसी में से अल्लाह ने मां हवा को पैदा किया, और पसली में से भी पूरी बॉडी के अंदर बॉन्स और हड्डियां तो बहुत सारी है, लेकिन हवा को अल्लाह ताला ने पसली में से ही बनाया। हालांकि हाथ की हड्डी है, पैर की हड्डी है, कुंडली में, लेकिन अल्लाह की चॉइस थी कि चेस्ट की हड्डी की है, पसली की पसली। ये अल्लाह ताला हमको एक मैसेज प्रैक्टिकली देना चाहते हैं, मैसेज ये देना चाहते कि पूरी बॉडी के अंदर जो कमजोर हड्डी है, एकदम वीक पॉइंट है, यानी पसली, उसमें से हमने हवा को पैदा किया, होया कि औरत ज़ात कमजोर है। ये इसके लिए नहीं है कि तुम उसके ऊपर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करो, उसको मारो और पीटो, उसको तकलीफ दो, इसके लिए अल्लाह ने औरत को पैदा नहीं किया। इसलिए शरीयत के अंदर ये कानून है कि जो मर्द दुनिया में बीवी पर जुल्म करेगा, वो बीवी बेचारी मजबूर है, चुपचाप बैठी रहेगी, सबर कर लेगी, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह उस मर्द को माफ नहीं करेगा। बीवी पर जुल्म करने की भी अल्लाह की उसको सजा दी जाएगी। तो एक मैसेज ये कि पसली में से, यानी कमजोर भी हड्डी में से अल्लाह ने औरत को बनाया है, ये कमजोर है, ये जुल्म करने की चीज नहीं। और दूसरा मैसेज ये था कि पसली जो है ये टेढ़ी होती है, वहां की होती है, देखो हाथ और पैर की हड्डी सीधी होती है और पसली टेढ़ी होती है। अल्लाह ताला सेकंड मैसेज हम लोगों को ये देना चाहते थे कि औरत की तबीयत में, उसके नेचर के अंदर, उसकी प्रकृति अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि उसके मिजाज में टेढ़ापन है, वाकापन है, और वाके बन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ न कुछ जो है मिजाज में उतनी बात होती है, उसको बहुत सीधा करने का ट्राई भी मत करें। हदीस में फरमाया कि उसको सीधा करने का पसीने को क्रैक हो जाएगी, टूट जाती है, और औरत को सीधा करने के लिए तलाक हो जाएगी। इसीलिए तो मर्द का कमाल ये होता है कि उसके नेचर के नेचुरल टेढ़ेपन को संभाल करके वो लाइफ को गुजार लिया जाए, कि मर्द का कमाल हो जाए कि उसके मिजाज का टेढ़ापन, उसकी तबीयत का टेढ़ापन सब समझ करके मर्द जिंदगी गुजार ले, ये मर्द का कमाल होता है। ये अल्लाह की तरफ से सेकंड मैसेज है। और थर्ड मैसेज ये है कि पसली ऐसी चीज है कि हार्ट इंसान का लेफ्ट साइड में होता है, हजारों में एक आदमी होता है जिसका हार्ट राइट साइड में होता है, बाकी सब इंसानों का हार्ट और दिल लेफ्ट साइड के अंदर होता है, और दाबी साइड की लेफ्ट साइड की पसली से जो हार्ट के बिल्कुल करीब होती है, बिल्कुल दिल के नजदीक होती है, उसमें से अल्लाह ने हजरत हवा को पैदा करवाया। इसमें थर्ड मैसेज हमको ये समझ में आता है कि ये औरत को दिल से यानी मोहब्बत से रखने की चीज है, कि इसको अच्छी तरह मोहब्बत से रखना है। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और हुजूर ने प्रैक्टिकली लाइफ जो हमको दी वो बहुत मोहब्बत और प्यार वाली लाइफ थी। हदीस में हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لنسائي بہترین آدمی کوالٹی پیپل اچھا آدمی کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا آدمی ہو وہ اپنی فیملی اور گھر والوں کے لیے اچھا ہو جائے और फिर आगे हुजूर ने अपनी बात फरमाई वाना खैरुहुम लिनिसाई का मेरी तो 11-11 बीवियां हैं लेकिन सबको अच्छी तरह मैं रखता हूं। हुजूर ने इरशाद किया तो बीवी से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना, प्यार को याद रखना, ये अल्लाह का भी मैसेज है और हुजूर की प्रैक्टिकल लाइफ का भी मैसेज है। आपको ऐसा मजहब दुनिया में कहां मिलेगा? आज हमारे नौजवान जो होते हैं यंगस्टर्स हमारे इल्लाह और मोहब्बत वगैरह सीखने के लिए गति करके नॉलेज पढ़ते और वह खुद फिल्में देखते हैं, मैं उनको कहता हूं अपने हुजूर की अपने पैरों पर की लाइफ स्टाइल देते हैं, उसमें कितना अच्छा मैसेज है हमारे वास्ते कि आदमी अपनी वाइफ के साथ ऐसी जिंदगी गुजारे। कितनी प्यारी बात हुजूर ने फरमाई, एक हदीस में फरमाया एक हस्बैंड एक शोहर अपने हाथ के अंदर एक लुकमा उठाए खाने का, रोटी का एक टुकड़ा उठाए, एक बिस्किट उठाए, एक चॉकलेट उठाए, एक चावल का निवाला उठाए और अपने हाथ से अपनी बीवी के मुंह में रख दे तो अल्लाह के पाक नबी ये फरमाते हैं उस शोहर को अल्लाह सदका करने का सवाब अदा। गया कुछ नहीं, बीवी जितना खाने वाली इतने ही खाएगी, जाए हमारे हाथ से पानी अपने हाथ से गया कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मुफ्त के अंदर सदके का सवाब मिल गया शोहर को, एक लुकमा खिलाया और नबी ने फरमाया उसको सदका करने का सवाब। बोलो ये लव और फ्रेंड दुनिया में और कौन सिखाएगा, ये हमारे नबी ने हमको सिखाया कि अपनी बीवी से इस तरह मोहब्बत करके रहो। और दूसरी एक हदीस के अंदर ही इरशाद फरमाया कि जो शोहर अपनी बीवी को मोहब्बत से देखे और बीवी शोहर को मोहब्बत से देखे, ये बहुत कम होता है, वरना जनरली ये होता है कि दूसरी औरत को तो मोहब्बत से देखते बीवी को मोहब्बत से नहीं देखते। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जो शोहर अपनी बीवी को मोहब्बत से देखे और बीवी शोहर को मोहब्बत से देखे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन दोनों हस्बैंड वाइफ को अल्लाह रहमत की नजर से देखते हैं, अल्लाह की रहमत उनको नसीब होगी। अब बदलाव ये बात कौन बतलाएगा हमारे नबी के अल्लाह कि शोहर बीवी को मोहब्बत से देखे, बीवी शोहर को मोहब्बत से देखे, मैं लोगों को यूं कहा करता हूँ कि ये वो मोहब्बत का तरीका हमको हमारे नबी ने सिखाया, इसके लिए कोई एज और उम्र की भी पाबंदी नहीं होती। ये वो तरीका आदमी बुरा हो गया, गरीब हो गया और कुछ ही नहीं करता मोहब्बत में, लेकिन ये काम तो बाकी है मरते दम तक कि दोनों एक दूसरे को मोहब्बत से देखे, अल्लाह रहमत की नजर से देखे, शौहर बीवी को लुकमा खिला रहे, अल्लाह सदके का सवाब दे रहे, इसके लिए कोई एज की भी जो है पाबंदी नहीं, उम्र की भी पाबंदी नहीं। ये वो प्यार और मोहब्बत है जो हुजूर ने हमको सिखाया है। वर्दे आलम अलैहिस्सलाम की सर्जरी हुई लेफ्ट साइड की पसली में से माँ हवा पैदा हुआ, जब पैदा होते थे तो आदम अलैहिस्सलाम को मीठी नींद मिल गई, अल्लाह ने हजरत हवा को दूर बिठा दिया। आदम अलैहिस्सलाम नींद में से उठे तो नजर पड़ी हजरत हवा के ऊपर, जैसे ही नजर पड़ी तो आप अंदाजा लगा कि तमाम दुनिया की तमाम औरतों की माँ हजरत हवा है। अल्लाह ने उनको कितना खूबसूरत बनाया, कहते हैं जैसी माँ वैसी बेटी, तो तमाम औरतों की माँ हजरत हवा कितनी खूबसूरत होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ठीक में से उठे और उनकी तरफ जाने लगे कि आज तक इस जन्नत में अकेले थे, अब कोई जो है लाइफ पार्टनर है सामने, चलो मैं जाऊं उसके पास। जैसे खड़े होकर के जाने लगे, हालांकि ये जन्नत की बात है, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों ने आवाज दी, फरमाया कि या आदम, अरे आदम रुक जाओ, ठहर जाओ, अतीमा रहा, पहले मेहर अदा करो, निकाह करो, शादी करो, उसके बाद जाने की इजाजत है, अभी नहीं। हालांकि ये जन्नत की बात है। आदम अलैहिस्सलाम जैसे रुक के जाने लगे, अल्लाह के फरिश्तों ने आवाज लगाई, अभी नहीं जा सकते, निकाह हो, शादी हो, उसके बाद बाकी है ना। इससे हमको समझ में आ गया कि कोई भी और कोई भी लड़की कितनी भी खूबसूरत नजर आए, शादी के बगैर उसके पास जाना नहीं जाना, निकाह के बगैर उसको टच भी नहीं करना है। इसी को जिना के और इसी को कुरान में अल्लाह ने हराम कर दिया, जिना के काम की मत जाओ, वो खुल्ला खुल्ली बेशर्मी और बेहयाई की बात है। और जिना का मीनिंग समझ लो अच्छी तरीके से, हदीस में आता है पराई औरत को आंख से देखना ये आंख का जिना है, पराई औरत की बात को कान से सुनना ये कान का जिना है, पराई औरत को हाथ से टच करना ये हाथ का जिना है, पराई औरत के पीछे चल के जाना ये पैर का जिना है। और जिसको हम जिना कहते हैं वो तो लास्ट में आ जाए, ये स्टार्टिंग है जिना के काम की। तो आदम अलैहिस्सलाम को रोक दिया फरिश्तों ने, पहले निकाह करो, शादी करो, मेहर दो और उसके बाद जाओ। और एक दूसरी बात ये समझ में आई कि निकाह में और कुछ भी मेहर हो गए तो काम चल जाता है, और दूसरी चीजों के चक्कर में पड़ने की भी कोई जरूरत मेहर दिलवाया क्या मेहर था, बहुत लंबा किस्सा है, इंशाल्लाह फिर सभी आपको सुना। अल्लाह ताला इस निकाह में मेहर और बरकत अता फरमाए, और मियां बीवी में अल्लाह जोड़ और मोहब्बत अता फरमाए, और इस निकाह को अल्लाह खैर और बरकत का जरिया बनाए, हर किस्म के शुरू फिलन से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, और हुजूर के पाक तरीके के मुताबिक औरतों के साथ अच्छी जिंदगी अल्लाह हमें नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कल अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرض بالبصر وأحسن بالفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له. النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او ما قال عليه الصلاه والسلام. سلیم بھائی نے اپنے ولایت کے مطابق سے اور ان دو گواہوں کی گواہی میں پوری مجلس کے گزرو آپ کے نکاح میں آپ کی بیوی بنا کے لیے آپ نے مہر دیا. بارک اللہ فیکم و علیکم و سلام علیکم. سبحان اللہ و بحمدہ و صلاۃ و سلام علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأرواح والآحاد وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ترحم الله ہماری خطا سے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرما لے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما لے اللہ اس نکاح میں خیر و برکت عطا فرما لے میاں بیوی میں کامل جوڑ اور محبت عطا فرما اس دیوالی زندگی کی خوشیوں سے مالا مال فرما پہلا ان کی روزی میں بھی اس حر اور برکت عطا فرما اس نکاح کو نگاہ اور شرمگاہ کی عصمت اور عفت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے. علماء صلحاء اور ذاکرین اور دین کے داعیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے. دونوں خاندان میں بھی جوڑ محبت عطا فرما دے. ہر قسم کے دور طلاق کتنے جھگڑوں سے اس کی حفاظت فرما دے. اے اللہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دونوں کو ایک دوسرے کا معین اور مددگار بنا دے. گناہ اور برائیوں سے حفاظت میں دونوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنا دے. اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کی جائز مرادوں کو پورا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما دے. اے اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اتنی خیر بلائیاں آئیں بدلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دے. جن شروع سے پنا چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.